संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
वो तो अभी मैं पेंडिंग में रखता हूँ, वो है अभी कायम, खत्म नहीं हो गया है, काफी तो बोल चुका हूँ, उसको और भी बोलना है। लेकिन बीच में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो रह न जाए। जैसा यदि सब कुछ सुनिश्चित है, समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। क्यों? एक समय नहीं घटेगा, एक समय नहीं बढ़ेगा। जिंदगी पल भर कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुता कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों? तो शास्त्र में अकाल मौत भी तो लिखी है। ये प्रश्न लोगों के दिमाग में खड़ा होता है कि अकाल मौत होती है तो तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय कहाँ रही? तुम तो कहते हो कि सब काम स्वकाल में ही होते हैं, समय पर ही होता है, और तुम शास्त्रों के प्रमाण पेश करते हो, लेकिन शास्त्रों में ही अकाल मौत की चर्चा है। ये भी एक प्रश्न लोगों के दिमाग में है, और उसके लिए सबसे बड़ा बल देने वाला तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है, जिसके आधार पर समाज से ये कहा जाता है कि इसमें ये लिखा है कि अकाल मौत होती है। मेरा ये कहना है कि तत्वार सूत्र के 10-5 सूत्र ऐसे हैं कि जिनका बहुत गलत अर्थ समझा जाता है। उन सूत्रों के नाम है इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, परस्परो गुरु जीवानाम, और भी अनेक सूत्र हैं, जिसमें एक सूत्र ये भी है कि जिसका सबसे ज्यादा गलत अर्थ समझा जाता रहा है आज तक। है ना? देखो, एक धबला में भी उसका अकाल मृत्यु का वर्णन है। अगले सूत्र जी की बात नहीं है, भाई एक का निपटेगा तो सबका निपट जाएगा। कोई तो वर्णन है ना जो इसमें है। देखिए क्या है तत्वार सूत्र में, मैं बोलता हूं तत्वार सूत्र का सूत्र, जिसमें वर्णन किया माना जाता है कि औपपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषा अनपवर्तायुषा। ये सूत्र है, इसका अर्थ आप लोग समझते हो, कितना समझते कितना नहीं समझते मैं नहीं जानता, मैं आपको अर्थ सामने करता हूं। दो ही अर्थ करूंगा, जो अर्थ आज तक समझा जाता है अथवा लोगों के द्वारा किया जाता है वो अर्थ पहले करूंगा, और दूसरा अर्थ जो असली है वो बाद में करूंगा, फिर मिलान करेंगे अपन दोनों का। अभी किया क्या जाता है पहले वो अर्थ, जो उपपाद जन्म वाले माने देव और नर की, चरमोत्तम देहा चरम शरीरी और उत्तम संघनन वाले माने वज्र विषम नाराज संघनन वाले, सर्वोत्तम देहा और असंख्य वर्षायुषा असंख्यात वर्ष की है आयु जिनकी, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, ये अर्थ किया जाता है। अब सही अर्थ क्या है मदन लाल जी, कि मैं पूछता हूं कि इसमें अकाल मृत्यु नहीं होती, ये कौन से शब्द का अर्थ है इसमें? देखो मैं सूत्र बोलता हूं, फिर विचार करना आप। औपादिक चरमोत्तम देहा इसका है क्या? नहीं। तो असंख्यात वर्षायुषा इसका है क्या? तो अनपवर्तायुषा इसका ही है ना, तो अनपवर्तायुषा का अर्थ अकाल मृत्यु नहीं होती कैसे होता है, कौन सी दिशा दिशा होता है? तो इसका असली अर्थ तो ये है कि इनकी आयु का अपकर्षण नहीं होता। अनपवर्त आयुषा, अपवर्त माने अपकर्षण होना घटना, और अनपवर्त माने अपकर्षण नहीं होना माने नहीं घटना, तो इनकी आयु का घटना नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि बाकी के जीवों की आयु का घटना होता है, ऐसा अर्थ निकाल के अकाल मृत्यु निकाली जाती है, है ना? क्योंकि इनकी आयु नहीं घटती है और बाकी की घटती है, तो इसका मतलब बाकी की अकाल मौत होती है और इनकी अकाल मौत नहीं होती है, ऐसा अर्थ किया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जीव का मरण अकाल में होता है, जो इसकी चर्चा है, ये चर्चा तो आयु कर्म के अपकर्षण की है। आयु कर्म का कर्म की अवस्थाएं 10 प्रकार की होती हैं। सुने, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण वगैरह होती कि नहीं होती। तो ये उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण माने घटना, संक्रमण माने बदलना, एक का दूसरे रूप होना। तो कहते कौन से कर्म की स्थिति का अपकर्षण होता है और कौन से का नहीं, ये प्रकरण चल रहा है। अभी अकाल मौत की कोई बात ही नहीं है, मौत की कोई चर्चा ही नहीं है। तो आयु होती है 2 प्रकार की, आयु कर्म, आयु कर्म की स्थिति, आयु कर्म अलग और उसकी स्थिति अलग, समझते ना। कर्म 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो आयु कर्म तो उसकी स्थिति और उसका अपकर्षण, समझे। तो आयु कर्म की स्थिति 2 प्रकार की होती, आयु कर्म 2 प्रकार का होता है। तो एक को बोलते हैं भुज्यमान आयु और एक को बोलते हैं बद्धमान आयु। अब देशपाल जी की क्लास मेरे को लेनी पड़ रही है, थोड़ा 5 मिनट धैर्य रखना, सब समझ में आएगा कि बद्धमान आयु क्या है और भुज्यमान आयु क्या है। कि अपने जो 4 आयु कर्म है ना, नरकायु, मनुष्यायु, त्रिंचायु और देवायु, तो हरेक जीव के कम से कम संसारी जीव के 1 आयु कर्म तो हमेशा रहता ही है और अधिक से अधिक 2 रह सकते हैं। तो जिसके 2 होते हैं उसमें 1 आयु होती है बद्धमान और 1 होती है भुज्यमान। क्या मतलब? कि जैसे अपन अभी मनुष्य गति में हैं, तो अपन के मनुष्य आयु कर्म का अपने उदय चल रहा है, यानी मनुष्य आयु को अपन भोग रहे हैं। इसे जिसे भोग रहे हैं उसे बोलते हैं भुज्यमान, समझ रहे ना। अब हमने मान लिया देव आयु बांध ली, त्रिभाग में बांध लेते ना आयु कर्म, त्रिभाग में हमने देव आयु बांध ली, तो 2 आयु हैं हमारे, 1 मनुष्य आयु है और 1 देव आयु है। सत्ता में तो 2 है लेकिन उदय में 1 है मनुष्य आयु। तो भोग रहे हम 1 को और दूसरी आयु है उसे हम अभी भोग नहीं रहे, पैकेट में बंद पड़ी है अंदर, तो उसे बोलते हैं बद्धमान। बंद तो गई लेकिन भोगने में नहीं आ रही। बाजार से आप 2 पैकेट लाए 1-1 किलो के चाय के, तो 1 पैकेट तो खोल लिया और रोजाना चाय बनाते हैं, 1 पैकेट बंद रखा, तो 1 पैकेट हो गया भुज्यमान और दूसरा पैकेट हो गया बंद। ठीक है ना, अब समझ गए, अब तो आ गया ना, बिना उदाहरण के तो समझ में नहीं आता। क्या कह रही, बुद्धिमान भुज्यमान, बुद्धिमान भुज्यमान कहते रहो, सब ऊपर से निकलता जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना कि बुद्धिमान आयु माने क्या और भुज्यमान आयु माने क्या। अब अपने पास 2 आयु कर्म हैं, 1 बुद्धिमान 1 भुज्यमान। अपने पास 2 पैकेट हैं चाय की पत्ती के, 1 खोल लिया है और 1 बंद है। अब अपन को वो पसंद नहीं आई तो अपन दुकानदार से कहते हैं वापस कर लो, तो दुकानदार कहता है कि जो पैकेट बंद है वो तो मैं वापस कर लूंगा, लेकिन जो खुल चुका है वो वापस नहीं कर लूंगा। कहता क्या नहीं कहता। और कोई दुकानदार ऐसा भी होता है कि तुम बंधा हुआ लाओ, खुला हुआ लाओ, वो जो चाय बना ली हो ना बाभी ले आओ, मैं वो भी वापस कर लूंगा। क्यों, क्या है, 10-5 रुपए का नुकसान होगा तो होगा, लेकिन एक ग्राहक तो नहीं छूटेगा। कोई बात नहीं, आप ले आओ, खुल गया पैकेट वो भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। होते कि नहीं होते। तो ये कहते हैं कि हमारे जो हमने आयु कर्म बांधा है, मान लो राजा सैनिक ने नरकायु बांध ली थी और 33 सागर की स्थिति बांधी थी 7 में नरक में जाने की, जो मुनिराज के गले में सांप डाला था ना मरा हुआ, जिंदा डालते तो क्या 14वें में जाते, क्यों कि सांप मरे हो जिंदा से थोड़ी मतलब है, उसके परिणामों में जितनी तीव्रता थी उसके हिसाब से आयु बंद होता है। हो सकता जिंदा डालता और 3रे में ही जाते ख्याल में है ना। तो 7 में नरक की आयु बांधी थी, अब मनुष्य आयु भी थी और नरक आयु भी थी। अब फिर उनको छायक शर्मा दर्शन हो गया, भगवान महावीर की शरण में आ गए, उनके प्रथम श्रोता बन गए श्रापकों में, तो वो जो आयु भोग रहे थे उसमें तो नो चेंज, लेकिन जो आयु बंधी थी और भोगना शुरू नहीं की थी नरक की, वो वहां से घटकर 84,000 वर्ष की रह गई। 33 सागर से घटकर 84,000 वर्ष की रह गई। तो उसको बोलते हैं कि वो बद्धमान आयु में अपकर्षण हो गया, समझे ना। तो ये जो इन जीवों के नाम बताए ना, कि इतने जो जीव हैं उनकी बद्धमान आयु में तो अपकर्षण होता है, लेकिन भुज्यमान आयु में अपकर्षण नहीं होता। और बाकी के जीव इनके अलावा उनके बद्धमान आयु में भी अपकर्षण होता है और भुज्यमान आयु में भी अपकर्षण होता है। माने तुम खुली भी पैकेट वापस हो जाएगा और बंद पैकेट भी वापस हो जाएगा। अब कैसे नहीं होगा, तो अनपवर्त आयु से बाकी का होता है क्या? ठीक है, इनके अलावा जीवों में तो फिर आकाश में तो मतलब क्या, अभी बाद में अपन कर लेंगे चर्चा, मेरे अभी बात करने दो। एक क्रमबद्ध नहीं पढ़ी थी आपने आज तक, किताब नहीं पढ़ी थी फिर? तो कोई में तो होती ना स्वप्न, बाद में कर लेना बात, सुनो मेरी बात, आप सुनो आप। तो उस आयु में कि मैं अपकर्षण किसका होता है वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। उससे ये सिद्ध कहां होता है कि वो अकाल में मर गया। हमने ये कल्पना कर ली कि इसकी इतनी आयु बनी है तो ये इसका अपकर्षण हो गया, तो ये मतलब 80 वर्ष की आयु बनी है। अब वो 40 वर्ष की उम्र में और उसकी उदीर्णा हो गई, वो अपकर्षण हो गया कि क्या क्या हुआ, और वो उधर सारी आयु फिर गई तो वो मर गया, तो हम कहेंगे उसे अकाल की मौत हो गई। जैसे विचार करो कि जैसे कि उसकी 80 वर्ष की उम्र है तो हाथ की रेखा भी 80 वर्ष की होगी, होगी ना, हाथ में जन्म कुंडली बनेगी तो कुंडली में ज्योतिष के हिसाब से 80 वर्ष की दिखेगी। आयु कर्म की स्थिति को कोई अवधिज्ञानी देखेगा मान लो, तो वो भी उसकी स्थिति अभी कितनी है तो उतनी ही दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो कोई उससे पूछे कि ये आदमी कब मरेगा तो वो बताएगा 80 वर्ष की उम्र में। ख्याल में आए ना, इसको जैसे कि एक कैदी को सजा हुई 20 साल की सजा हुई, तो वो कैदी ने मजिस्ट्रेट से पूछा कि साहब मैं जेल से कब छूटूंगा, कि 20 साल बाद। अपने वकील से पूछा जैसे 1,000 रुपया दिए थे, कि साहब मैं कब छूटूंगा, कि 20 साल बाद। अरे मैंने तुम्हें 1,000 रुपया दिए कि क्या करूं, तो सजा 20 साल की हुई है। फिर जेलर से पूछा तो कहा 20 साल बाद। तो उसके घर वाले भगवान महावीर के सम्मोषण में गए और उनसे पूछा कि मेरा पति जेल से कब छूटेगा, तो उन्होंने कहा 10 साल बाद। झगड़ा पड़ गया, क्या हुआ? मजिस्ट्रेट कहता है 20 साल बाद, जेलर कहता है 20 साल बाद, वकील कहता है 20 साल बाद, और भगवान कहते हैं 10 साल बाद। तो किसके सच्चे माने? तो कहा भाई दोनों ही की सच्ची है। कि दोनों की सच्ची कैसे हो सकती है, क्योंकि जेलर ने तो उस आर्डर के आधार पर कहा है, मजिस्ट्रेट ने आर्डर के आधार पर कहा है, वो तो आर्डर को ही जान सकता है। तुम कब छूटोगे वो भविष्य का ज्ञाता नहीं है। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में ये भी आया है कि 10 साल बाद बड़ी मुश्किल से राजा के बेटा होगा बुढ़ापे में, और उसकी खुशी में वो सारे कैदी छोड़ दिए जाएंगे, उसमें तेरा पति भी छूट जाएगा। लेकिन ये बात ना मजिस्ट्रेट जानता है, ना जेलर जानता है, और ना वकील जानता है। वो कैसे बताएगा? जब वो जो सजा घट जाएगी वो तो सजा कितनी हुई है वो बताएगा। तो आज आयु कर्म की स्थिति आपकी कितनी है, कर्म को देखकर बताने वाले तो उतनी ही बताएंगे, आयु की रेखा तो उसके हिसाब से बनेगी, जन्म कुंडली में तो उसके हिसाब से आएगा, क्यों? और जब कोई कारण बना और उसकी उदीर्णा हो गई, कदली घात हो गया, क्या क्या नाम होंगे शास्त्र में, अपकर्षण वक्त जो भी नाम हो शास्त्रीय भाषा का, वो हम जवाहरलाल जी निबद लेंगे। तुम तो ये समझ लो कि वो जो बीच में हो जाएगा वो थोड़ी उन्हें मालूम है, लेकिन केवली भगवान को वो भी मालूम है। तो तो ये तो आयु की अनपवर्त की चर्चा है, किसी जीव के अकाल मरण की चर्चा नहीं है। पहले घड़ी का काम घड़े से लिया जाता था, अब एक घड़े में पानी भर देते थे तो एक बारीक छेद करते थे, एक एक बूंद पानी गिरता था और 24 घंटे में घड़ा खाली होता था। क्यों जी, अभी पानी भरा और कोई पूछे घड़ा कब खाली होगा तो सब क्या बताएंगे, 24 घंटे में। और 12 घंटे बाद एक बच्चा आया, एक पत्थर मारा और सारा पानी एक साथ नीचे आ गया, ये कौन बता सकता है? एक केवल ज्ञानी बता सकता, क्योंकि उसे पता है कि 12 घंटे बाद कोई आकर इसमें पत्थर मारेगा और सारा पानी एक साथ आ जाएगा। तो लोग कहेंगे साहब ये सारा पानी तुम तो 24 घंटे कहा था, ये 12 घंटे में कैसे निकल गया? तो मैं क्या करूं, अकाल में गिर गया तो? वो तो सुकाल में गिरता तो मैं उसे तो 24 घंटे के पहले गिर जाता तो मेरी गारंटी थी। अब सवाल ये है कि फिर जो उनने बताया वो सच्चा के, जो केवली ने बताया वो सच्चा के, पर गजब करता है तू? केवली ज्ञा के ज्ञान से छयोपशम ज्ञान वाले की तुलना करता है? यदि दोनों में टकराव हो तो गारंटी से केवली के ज्ञान में जो बात आई है वही सही है। क्यों? क्योंकि उसका तो अनुमान के आधार पर था, आयु कर्म की स्थिति को देख करके उसने अनुमान किया था, उसका तो अनुमान के आधार पर ज्ञान था जो उसने वो आदेश देखकर किया था, और इनने तो ये देखा था। अब मैं पूछता हूं कि उस घड़े फूटने का सुकाल, पानी गिरने का सुकाल क्या था? 12 घंटे बाद था ना सुकाल, तो केवल ज्ञानी ने उसको सुकाल को जाना था और हमने 24 घंटा समझ लिया तो हमारा अज्ञान हुआ, वो कैसे अकाल में हो गया? उसका स्वकाल तो जो वो 80 वर्ष की आयु कर्म था, तो 40 वर्ष में अपकर्षण होकर उदीर्ण होकर वो जो मरा, तो वो जो अगली गति में गया उसके वहां जाने का नक्की था क्या नहीं था? तो उसका तो बहुत पहले से सब चीजें नक्की थी, सुनिश्चित थी, केवल ज्ञान में तो बहुत पहले से ये सब बातें आई हुई थी, तो उसका तो स्वकाल ही वो था। लेकिन हमारी कल्पना में जिसको हमने स्वकाल समझ लिया था, हम उसकी दृष्टि से उसे अकाल कहने लगे। और ये तो बहुत बारीक बात है, कोई कर्म फलोसफी को जानता हो, कोई अवध ज्ञानी हो, कोई ज्योतिष से बताए कि इसकी इतनी आयु है, उसकी बात झूठी पड़ जाए तो वो समझाए। लेकिन समस्या तो हमारी है, हम कैसे नक्की करें कि इस आदमी की अकाल मृत्यु हुई और इस आदमी की सुकाल। बोलो, अरे की अपन को उम्र पता हो, बोलो बोलो कोमल सिंह जी, तो हम कह सकते हैं, हम तो 20 वर्ष का मरा तो हम कह दिया अकाल मौत हो गई, 90 वर्ष का सड़ के मरा तो कह दी सुकाल मौत हो गई। हमारा क्या है, उसकी उम्र कितनी थी जन्म के समय में ही, ये हमें तो पता नहीं है ना मदन लाल जी। तो 20 वर्ष की उम्र में मरा तो वो उसका काल नहीं आया था, एक के उसको हम अकाल कैसे नक्की करें? मैं आपसे पूछता हूं कि अभी एक आदमी ने, सोमचंद भाई ने कहा कि हमारा 1,00,001 लिख लो, मैं तुम्हें तो कम दिए पैसे, कम दिए, तो कम दिए कैसे, कैसे नक्की किए कम दिए? आपने पहले 5,00,000 बोले हो और 1,00,000 दो तो हम कम कह सकते हैं, आपने बोले ही नहीं तो कम कैसे कह? तो नहीं साहब मैं तो ज्यादा दे दिए। ज्यादा कैसे दे दिए? तुम 50,000 बोले हो, 1,00,000 दे रहे हो तो ज्यादा कह रहे हैं, तुम कम ज्यादा कैसे कह सकते हो बताओ? मैंने 1,00,000 को तुम कम और ज्यादा कैसे कहो? साहब आपकी हैसियत के हिसाब से कम है क्या? साहब मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से ज्यादा दे दिए, तो मेरे हैसियत नक्की करो। मैंने कम और ज्यादा कैसे, उसे अकाल कब कह सकते हो? कि जब का उसका काल आपके ज्ञान में पहले से नक्की हो, तो किसी घटना को तुम अकाल कह सकते हो। बोलो भगत राम जी, अकाल का नक्की कैसे करें? लेकिन हम तो ऐसे मोटे मोटे कर लेते हैं, छोटी उम्र में मर गया तो अकाल मौत हो गई, ट्रक के नीचे आके मर गया तो अकाल मौत हो गई, क्यों? तो ससुर के मरे, जब घर वाले कहने लग जाएं कि न मरे न माता छोड़े, तब मरे तो समझ लेना कि अभी सुकाल मौत हुई है। ये अकाल मौत का कंसेप्ट क्या, कैसे माने, किस मौत को हम अकाल मौत माने और किस मौत को हम सुकाल मौत माने? पहले हमारी आयु तो नक्की होनी चाहिए ना, और आयु तो मनुष्य आयु 120 वर्ष की होती है, वो तो कॉमन मनुष्य की है, हरेक की तो अलग अलग होती है ना, किसी की अंतर्मुहूर्त भी हो सकती है, किसी की 1 वर्ष भी हो सकती है, किसी की 10 वर्ष। तो पहले वो आयु हमारे ज्ञान में हो, क्यों? तब फिर वो मरे तो उससे मिलान करे तो उसे हम अकाल शब्द से कह सकते हैं। एक तो वो पता नहीं। अब मान लो वो भी पता हो तो उसके बीच में वो उदीरना और अपकर्षण जो जो चक्कर हैं, वो सब बातें बीच में कब कब होंगी, क्या क्या होंगी, वो डिटेल तो केवल ज्ञान में ही है। तो वो डिटेल हमारे पास हो और फिर उस डिटेल का उल्लंघन करके होए तो हम अकाल कह सकते हैं। तो अकाल कहते किस आधार पर है? इसलिए जो समय के पहले मर गया उसका नाम अकाल मौत है, ये बात ही सही नहीं। तो मैं पूछता हूं अकाल का अर्थ क्या होता है? अकाल का अर्थ समय से पहले, ये आपने कहां से लगाया मुझे बताओ। कैसे गजब हो गया? क्यों? राजस्थान में 10 वर्ष पहले अकाल पड़ा था, उसका कहा समय से पहले पड़ा था, ये अर्थ होता है? कहां से निकाला मुझे बताओ। तो हमारे दिमाग में वैसे ही घुसा दिया हमने, कहां से? कोई प्रयोग तो बताओ मुझे। राजस्थान में अकाल पड़ा था उसका अर्थ समय से पहले हुआ था, कोई क्या ऐसा अर्थ है कि दुर्भिक्ष होता है उसका अर्थ? तो देखो ये कोई भी शब्द को जो आ लगा करके बनाया जाता है दूसरा शब्द, तो उसका क्या अर्थ होता है जरा विचार करो। देखो जयपुर में कितने जैनी हैं डॉक्टर साहब? 2.5 लाख। और अजैन कितने हैं? क्या बोलो, अजैन कितने हैं? कि 25 लाख की बस्ती है तो 22.5 लाख अजैन हुए। क्यों? ठीक है अचल जी, लेकिन मैं कहता हूं कि जयपुर में एक भी अजैन नहीं है। तो क्या कहते हो? आपने उन्हें अजैन कहा, मैं आप कौन हैं? कि मैं जैन हूं। तो मैं उसे जाके पूछूं कि आप कौन हैं, और वो कहे कि मैं अजैन हूं, ऐसा एक भी आदमी मुझे जयपुर में बताओ जो अपने को अजैन कहता है। कोई अपने को अजैन नहीं मानता है। क्यों? कि अजैन नाम तो हमने उसे दिया है अपनी तरफ से, उसने उसे स्वीकार कहां किया? बोलो, मुसलमान ही नहीं कहेगा कि ये मुसलमान और ये गैर मुस्लिम, तो आपको ने सदी दी कि मैं गैर मुस्लिम हूं, ऐसा बोलते? जब आप अपने को गैर मुस्लिम नहीं कहते, जब आप अपने को अहिंदू नहीं कहते, जब आप अपने को ईसाई नहीं कहते, तो वो अपने को अजैन क्यों कहेगा? तो ये अजैन शब्द जैनी लोग अपने से दूसरों को भिन्न बताने के लिए अजैन शब्द का उपयोग करते हैं। तो क्यों करें? हिंदू कह देना, ईसाई कह देना, मुसलमान कह देना, क्या जरूरत है अजैन कहने की? क्या फिर ना मालूम कितने नाम लेने पड़ेंगे और फिर भी अंत नहीं आएगा, कोई पारसी निकल आएगा? क्यों? इसलिए अपने को रखा एक में और बाकी सबको रखा एक में, और उसके लिए हम अजैन शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो अजैन हो गया। अब अजीब, अजीब क्या है? तो जीव नहीं बेसब अजीब। यदि वैसे बोले तो 5 बोलने बनेंगे, धर्म अधर्म आकाश काल और खुद गए, और एक नाम दिया तो अजीब। तो जैसे जैन से अजैन, जीव से अजीब, ऐसे ही काल से अकाल। तो अकाल का क्या अर्थ हुआ? यदि काल माने काल द्रव्य है तो अकाल का अर्थ हुआ जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। वो अजीब के हिसाब से कोई न्याय है कि नहीं? लेकिन यहां काल का अर्थ काल द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है कारकों का, कारणों का। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, संवायों का। तो ये 5 संवाय हैं, 5 जो कारण हैं, कौन कौन? स्वभाव, काललब्धि, निमित्त, होनहार और पुरुषार्थ। इनको बोलते हैं 5 कारण, 5 संवाय। तो इसमें काल माने काल लब्धि नाम के संवाय के अर्थ में है कि काम काल लब्धि आने पर ही होता है, कि अकाल में कि बिना काल लब्धि के बिना भी हो जाता है, ये अर्थ है इसका। क्यों? तो काल माने काल लब्धि, तो अकाल माने बाकी के चार संवाय का नाम है अकाल। तो अकाल माने क्या हुआ? स्वभाव। अकाल माने निमित्त, अकाल माने पुरुषार्थ, अकाल माने होनहार। बोलो, सोचा था कभी? ये सब लिखा है इसमें। काल नामक संवाय को छोड़कर बाकी के चार संवाय, उनका नाम है अकाल। अब अकाल मृत्यु, इसका चार ये इसी से बना है ये शब्द। तो कहते हैं कोई भी कारण होता है, कार्य होता है, तो उसमें पांचों कारण नियम से होते ही होते हैं, और जब कार्य नहीं होता है तो एक भी कारण सच्चा होता नहीं है। लेकिन होते तो पांच कारण है कार्य होने में, और कहा जाता है एक को, क्योंकि पांच नहीं कहे जा सकते। ये पद्धति है लोक में, तो कैसे पद्धति है बोलो? देखो, देश को आजाद किसने किया है? नहीं आया समझ में? देखो, 2 अक्टूबर को बोल की सभा हो तो महात्मा गांधी ने किया, समझ में आया ना? 14 नवंबर की सभा हो तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। आप समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? तो अनेक लोगों के बहुत सम्मिलित प्रयत्न से भारत आजाद हुआ है, ये बात 100% सच्ची है। उसमें कुछ मेन फिगर्स भी हैं जिनका बराबरी का हिस्सा है। क्यों? लेकिन गांधी जयंती के दिन भाषण देना हो तो गांधी जी ने अहिंसा के नाम आधार पर देश को आजाद करा दिया। नेहरू जयंती पर भाषण देना हो तो नेहरू जी ने देश को आजाद करा दिया। सुभाष जयंती पर बोलना हो तो सुभाष जी ने करा दिया। सबने कराया, लेकिन एक को मुख्य करके कहा जाता है और बाकी को गौण किया जाता है। क्यों? गुरुदेव ने गांव गांव में आत्मा की बात पहुंचा दी। क्यों पहुंचा दी ना? तो हमने कुछ नहीं किया। तो तुम्हारा जो जयंती आई है तुम्हारी कहती है? अरे गुरुदेव जी चल रहे। तो लोक की पद्धति है कि अनेक कारणों से मिलकर जो कार्य होता है तो अनेक का तो कहा नहीं जा सकता, तो एक समय एक का कहा जाता है और बाकी कारणों को गौण किया जाता है। तो क्या कहते हैं कि जब कोई कार्य होता है तो कभी तो काल लब्धि की मुख्यता से कह देते हैं, कभी होनहार की मुख्यता से कह देते हैं, कभी निमित्त को मुख बनाकर कह देते हैं, कभी पुरुषार्थ को मुख बनाकर कह देते हैं। पांच कारणों में से कोई एक कारण कहा जाता है और चार गौण रखे जाते हैं। अब अपने यहां कौन सा कार्य है? यहां पर मृत्यु नाम का कार्य है, अकाल मृत्यु, ये बात चल रही ना अपनी? तो कार्य क्या है यहां पर मतलब? मृत्यु। अब मृत्यु नामक कार्य का कारण कौन है? तो कारण तो पांच ही होंगे। कौन से पांच होंगे? कि जिसका मरना स्वभाव है वो ही मरेगा, माने संसारी ही मरेगा, सिद्ध कभी मरने वाले नहीं है, ये स्वभाव नाम का फैक्टर है, और स्वसमय में ही मरेगा, ये काल लब्धि नामक फैक्टर, और निमित्त भी नक्की होगा कि हार्ट फेल होगा कि ब्रेन हेमरेज होगा कि ट्रक के आगे नीचे मरेगा। क्यों? ये सब निमित्त भी नक्की है, वो निमित्त नाम का फैक्टर। जो मरने की विधि है, क्यों वो विधि से ही मरेगा, वो विधि नाम का फैक्टर, और जो होना है मरना होगा तो मरेगा और नहीं मरना होगा, तो ये पांचों ही कारण होंगे। जब भी मृत्यु नामक कार्य होगा तो पांचों ही कारण होंगे, लेकिन कहां एक जाएगा? तो कौन को कहें? बोलो किसको कहें, किसको नाम दे रहे? इसका कौन नियामक है कि इन पांच में से एक है? क्यों रजनी भाई, मेरे साथ को दूसरा नाम ले दिया, तुम्हारे साथ दूसरा, इनका नाम तीसरा, इनको कह दिया कि काल मोटे निमित्त ऐसा प्रबल आ गया था, प्रत्येक नीचे आ गया। क्यों? हरेक के पांचों ही कारण होना है, लेकिन कहां एक जाएगा? देखो कैसा वो कैसे मर गया, तो डॉक्टर लोग कहेंगे हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेल हो गया, दिमाग तो फेल नहीं हुआ ना, दिमाग तो काम कर रहा होगा ना,
दिमाग भी हो गया, बाद में दिमाग भी हो गया, वे किडनी तो वो भी फैल हो गई थी, तो हार्ट फैल हो गया, क्यों कहते तो ये क्यों मर गया, क्योंकि किडनी फैल हो गई थी, तो हार्ट चल रहा था। इतना ही फर्क पड़ता है कि वो किडनी दो मिनट पहले फैल हो गई होगी और हार्ट दो मिनट बाद हुआ होगा, एक का दो मिनट पहले हार्ट हुआ होगा क्यों और दो मिनट बाद ऐसे होता क्यों, और दिमाग भी फैल हुआ, किडनी भी हुई, फेफड़े भी गए सब गए, तो जाके तो सब ही है, लेकिन नाम होता है एक का, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई किडनी से मरता है, कोई ब्रेन हेमरेज से मरता है, क्या? अरे कुछ नहीं, जो मरते हैं उसके सब मरते हैं, सब फेल होते हैं, और जो नहीं मरते हैं उसका कुछ नहीं मरता, लेकिन नाम एक ही दिया जाएगा, डॉक्टर लोग सर्टिफिकेट एक का एक ही देंगे, क्यों? अब क्यों डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे वही मौत हो जाए तो आप काय का सर्टिफिकेट परमानेंट, कहीं कोई कान नहीं देखा तो हृदय गति रुक जाने, एक ऐसा खोज के रख लो कि जब कुछ नहीं दिखे तो उसका नाम लिख देना, क्यों होता क्या नहीं होता, तो होते तो सब ही फैले, अगले हृदय गति थोड़ी रुकी, फेफड़ा भी रुक गया, किडनी भी रुक गई, माइंड भी रुक गया, अरे हृदय गति रुकी तो भाषण चालू रख दे, समझ गए ना, तो कारण होते होता है सब फैल होते हैं, एक कहा जाता है एक, अब साफ दिख रहा है ट्रेक के नीचे आके मर गया तो निमित्त दिख रहा है इसलिए, क्यों तो कह देंगे तो क्या करें, इसका निमित्त ही ऐसा था, निमित्त से मर गया, निमित्त कह देंगे कि नहीं कह देंगे, अब अपने शांति बैठे बैठे एकदम प्रयत्न कर रहे हैं और यही खत्म हो जाए, अभी तो बिल्कुल अच्छी थी, कुछ गड़बड़ी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, अभी तो हमने पूरा मेडिकल चेकअप कराया था, क्यों घूम के आए थे, शाम को खाना खाया था, तो क्या हुआ, काल ही आ गया, काल लग दी तो कह देंगे, तो काल को प्रयत्न करते ही होना था, नहीं करते आज प्रयत्न, पहले से कुछ गड़बड़ थी तो, अरे भैया होना ही आ रही थी, होना तो लगा देंगे, समझे ना, कोई ना एक कोई कारण को कह देंगे, अब जी अकाल क्यों, अकाल नाम का तो कोई कारण ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, अकाल नाम का तो कोई कारण ही नहीं है, तो अकाल मौत क्यों कहते हैं, तो कहते हैं कि जब कोई एक कारण को नक्की नहीं कर पाते हैं, समझे ना, और अभी काल तो मान रखा था 70-80 वर्ष तक जिएंगे, तो काल कारण दिखाई देता नहीं है, वो तो बाकी चार में से कोई एक को नक्की कर नहीं पाते हैं, तो हम कह देते हैं कि कोई काल को छोड़कर कोई दूसरा कारण होगा, उसका नाम है अकाल मौत, इसलिए अकाल मौत का अर्थ समय के पहले की मौत होता ही नहीं है, काल का नामक कारण को छोड़कर अन्य कारणों की मुख्यता से किए गए कथन को बोलते हैं अकाल मृत्यु, कितनी मेहनत का काम है, अभी भी कितने लोगों के गले उतरी होगी, कितने लोगों के गले नहीं उतरी होगी, वो तो भगवान जाने, देखो भाई साहब, यदि अपन समय की पहले की मौत मानेंगे अकाल मौत का अर्थ, तो उसमें सैकड़ों समस्या खड़ी होंगी, यदि आप ये अर्थ नहीं माने और आप कहें कि हम तो वही अर्थ मानेंगे या समय के पहले, तो सबसे पहले तो समय नक्की करना पड़ेगा, अब वो संभव नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान में तो जो एक्चुअल समय हम मरे हैं वही दिख रहा है, हमारे ज्ञान में आगे पीछे गड़बड़ दिख रही तो काल नक्की होगा ही नहीं, और दूसरी बात कि अकाल मौत मारेंगे तो अकाल जन्म मानना पड़ेगा, मान लीजिए हम 100 वर्ष की उम्र में मरने वाले थे और वो सुरग जाने वाले थे, तो वह जहां सुरग में जाने वाले थे वह सीट भी 100 वर्ष बाद खाली होनी थी, यही असु है ना, और वो मर करके सीट खाली हो गई, वही मनुष्य होता, और हम 25 वर्ष पहले मर गए तो बात सीट खाली हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ अकाल मौत होती वहां तो नहीं होती, अब 25 साल तक हम कहां लटके रहेंगे, अकाल मौत मानेंगे तो अकाल जन्म मानना पड़ेगा, और अकाल जन्म मानना पड़ेंगे तो हमारा ही नहीं उसका भी अकाल जन्म मानना पड़ेगा, अकाल उसकी भी अकाल मौत करनी पड़ेगी, और फिर वो जहां जाएगा उसका अकाल जन्म, कितना चक्कर है, कितनी व्यवस्था गड़बड़ आएगी, सोचो आप, कोई एक चीज से जुड़ा हुआ थोड़ी है मामला, क्यों और अकेले मौत की बात थोड़ी है, हजारों कार्य है भाई साहब, तो एक एक कार्य का हम उसका काल अलग अलग मानेंगे कि बदला जा सकता है, तो उसे हटा के कहां ले जाएंगे फिर बोलो है? तो उसे वहां से हटा के कहां ले जाएंगे? और सब जीवों की होती तो बड़ी अव्यवस्था हो जाती, अब भौतों की तो आप कहते हो नहीं होती है। देखो अब जरा समझना, अभी बनाए थे जिन जिन की नहीं होती, किन की उत्पाद जन्म वालों की माने देव नारकियों की नहीं होती, ये हुआ ना एक एक फंडामेंटल देखना। तो अब जिन्हें मर के स्वर्ग में जाना है उनकी अकाल मौत नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी नहीं होती तो वो सीट खाली नहीं होगी। और जिन्हें नरक जाना है उनकी अकाल मौत नहीं होती, तो अकेले देवो नारकियों की नहीं, जिन्हें स्वर्ग और नरक जाना है उनकी भी नहीं होगी। तो बचे कौन? क्योंकि नारकी मर के स्वर्ग में नहीं जाते और देव मर के नारकी नहीं होते, तो जिनकी अकाल मौत होने उन्हीं में से तो जाना है नरक और स्वर्ग में, समझ में आया कन्या? तो उनकी भी नहीं होगी। अब सुना सुना मनुष्यों में किनकी होगी? तो उतने देर निकल गए। अब मनुष्यों में जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, तो एक पल दो पल तीन पल जो कितनी असंख्यात वर्ष होगी क्या नहीं, तो भोग भूमियों की छुट्टी हो गई, भोग भूमि मनुष्य तिरंत नहीं होंगे तो उनकी नहीं होगी। तो बेचारे बच्चे कौन जरा सोचना, तो वो रिजर्वेशन जैसा होगा 50% औरतों को, इतने परसेंट हरिजनों को, इतने अगड़ों को, इतने बगड़ों को, देते देते 150% चले जाएंगे तो बचेंगे क्या? तो रिजर्वेशन के बिना बच्चे कौन? जिन्हें रिजर्वेशन नहीं देना है इतने अल्पसंख्यकों के, क्या असंख्यात वर्ग? तो चरम शरीरियों की नहीं होगी, उत्तम संगठन वालों की नहीं होगी। तो अब ये सब बता दो तो कौन बचे अकाल मौत होने के लिए? 2000 साल तो निगोजी रह गए बेचारे, तो उनकी तो उम्र एक श्वास में 18 बार जन्म ने मरने की है, अब उनमें क्या अकाल मौत होगी? उनका खेल तो ऐसा हो गया कि एक आदमी नौकरी करने आया सेठ जी के यहाँ, नौकरी करेगा जहाँ जितना काम करेगा जो आप बताओगे सो करूंगा, कच्चा तनख्वाह लेगा कि रोटी और कपड़ा, शायद बहुत मांगता है कुछ कम कर, क्योंकि सेठ जी की आदत है कि जिस भाव सामने वाला बताए उस भाव को लेना ही नहीं, बार्गेनिंग करके ही लेना, कुछ कम कर बहुत मांगता है आदत पड़ी ना, क्या कम करूं? नहीं नहीं कम तो करना पड़ेगा, कम तो कर, मुहिमा की तो मैंने आज तक किसी को नहीं दी, साहब कम क्या करना करूं मैं, करना तो पड़ेगा, तो ठीक है कपड़े मत देना, अकेली रोटी खाऊंगा, क्योंकि रोटी नहीं मांग लू मैं कम करूंगा तो काम कैसे करूंगा? अब कपड़े नहीं देना आपके घर में दिगंबर लेके काम करूंगा, मेरे बाप का कैसे करूंगा? अरे किनकी अकाल मौत करना चाहते हो? इनकी नहीं, इनकी नहीं, इनकी नहीं, इनकी नहीं, नहीं अकाल मौत में मरने को बचेंगे कौन? तो निगोरी बचा बेचारा जो एक श्वास में 18 बार जन्मता है मरता है, तो उसकी क्या अकाल मौत होगी? तो किसकी होगी? तो 30 पर्याय वालों की होगी। तो 30 पर्याय में हम 2000 सागर के लिए आए निकल के, तो ये लोग कहते हैं 2000 सागर में 1260 सागर तो जाते हैं देवगति में, वो बनफर्ड 740 जाते हैं नरक गति में, 2000 सागर तो पूरे हो गए नरक और स्वर्ग में, उनकी अकाल मौत होती नहीं। अब वो जो कुछ अधिक में बचे उसमें 300 मनुष्य सब सवाल है, और मनुष्यों के तो 48 ही भ्रम मिलेंगे, 48 ही मिलेंगे क्या नहीं, तो 48 में से 24 तो अंतर्भूत में चले जाएंगे अपर्याप्त अवस्था में, उनकी क्या अकाल मौत होगी और क्या अकाल होगी? अब 24 में समझ गए वो आसाद स्त्री पुरुष नपुंसक के उनसे कोई मतलब नहीं, अब वो 24 ही भव रह गए तुम्हारा अकाल मौत मरने के लिए, और उनमें भी तीर्थंकर चले जाएंगे, अतरम शरीर ही चले जाएंगे, स्वर्ग नरक जाने वाले जो मर के स्वर्ग जाएंगे वे भी चले जाएंगे नरक वाले भी, अभी बहुत बचा जरा प्रैक्टिकल थिंकिंग तो करो तुम, जब सब जगह का सब सुनिश्चित है और बैलेंस बिगड़ना ही नहीं है तो अकाल मौत रख करके तुम किसकी अकाल मौत चाहते हो, कहां का डर लगाते हो, कहां गुंजाइश है? ऐसी कल्पना लोग की उड़ाने हैं कि एक विधवा बहन थी, खूब गालियां बक रही थी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है कि विधवाएं गालियां बकें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला तो मर गया। हमारे यहाँ तो विधवा सब राण बोलते हैं कि राणों को बकने से कौन रोके। भक्ति जो बात हो धमाधम धमाधम तो गालियां दे रही थी, इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जा, किसी भाषा में बोलती कि नहीं बोलती क्या अतुल जी? इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जाए जिनने ऐसा किया ऐसा किया। इतने में एक पंच आया मुझे वाला, क्या कहती है कि आपको छोड़कर दूसरा आया कि क्या कहा गया आपको छोड़कर। तो ऐसे छोड़ेगी तो किन की दाढ़ी में आग लगेगी? अब तो कोई दाढ़ी वाला ही नहीं है जिसमें आग लगाए, एक दाढ़ी वाला दिखता है सामने। विचार करोगे गंभीरता से तो अकाल मौत को बचा कौन? समझे ना, तुमने यदि देवाई बांध ली है तो अकाल मौत नहीं हो सकती, नरकायु बांध ली है तो अकाल मौत नहीं हो सकती, देवगति में नहीं हो सकती, नरक गति में कहां है? गंभीरता से विचार कर जबरदस्ती अकाल मौत का इतना भय खड़ा रखा है, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा आ जाए तो अकाल मौत का भय तेरे को होने ही वाला